अभी तर्क भाषा में द्वित्व का प्रसंग चल रहा है। द्वित्व के विषय में कहा गया कि यह द्वित्व जो है वो अनित्यम एवं अनित्य ही होता है, नित्य नहीं होता, और वह द्वित्व रहता कहाँ है, उस द्वित्व की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके लिए कहा कि तच्च द्वयोः पिण्डयोः, यह जो द्वित्व है ये दो पिंडों में रहने वाला होता है। पिंड समझते हैं ना, किसी भी वस्तु का जो समूह होता है, गेंद टाइप जो होता है उसको हम पिंड कहते हैं। जैसे मिट्टी का ढेला हुआ, आटा को गूंद करके जो गोला बनाते हैं वो हुआ, इन सबों को पिंड कहा जाता है। तो द्रव्य समूह जो है उसको पिंड कहते हैं। तो यह जो द्वित्व है ये द्वयोः पिण्डयोः, दो पिंडों में रहने वाला होता है द्वित्व। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है द्वित्व की, तो इदम एकम इति अपेक्षा बुद्धिया जन्यते। इदम एक माने यह एक है और यह एक है, इस तरह से अपेक्षा बुद्धि के द्वारा इस द्वित्व की उत्पत्ति होती है। वही कहा कि इदम एकम इति अपेक्षा बुद्धिया जन्यते। इदम एकम इसको हम कहते हैं अपेक्षा बुद्धि, और इसी अपेक्षा बुद्धि से जो है द्वित्व का जन्म होता है। अब यहाँ जो है ना, अगर त्रित्व का जन्म मानो तो उसमें क्या करेंगे, इसमें तीन बार कहना पड़ेगा, इदम एकम पिंडम। इस तरह से ये जो इदम एकम है, इसी का नाम है अपेक्षा बुद्धि, और अपेक्षा बुद्धि से ही जो है तृत्व का जन्म होगा, ऐसे चतुष्ट का जन्म होगा। तो इस तरह से द्वित्व तृत्व चतुष्ट आदि का जो जन्म होता है वह अपेक्षा बुद्धि से होता है। अब अपेक्षा बुद्धि शब्द का अगर अर्थ जानना चाहें, ऐसे अपेक्षा बुद्धि है क्या, ये तो आप जान गए कि इदम एकम ये है अपेक्षा बुद्धि। अब दो के बदले तीन ले लेंगे तो भी अपेक्षा बुद्धि, चार ले लेंगे तो भी, पांच ले लेंगे तो भी, जिस संख्या को उत्पन्न करना हो उतने प्रकार का इदम एकम इस तरह से बुद्धि करनी पड़ेगी, वही है अपेक्षा बुद्धि। इसको अगर हम कहना पड़े शास्त्र की शैली में तो कहेंगे कि द्वित्वादि उत्पादनार्थम अपेक्षणीयम ज्ञानम अपेक्षा बुद्धि। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि द्वित्वादि उत्पादनार्थम अपेक्षणीयम ज्ञानम, द्वित्वादि उत्पादनार्थम अपेक्षणीयम ज्ञानम। द्वित्वादि के आगे उत्पादनार्थम है यण हो जाएगा तो होगा द्वित्वाद्युत्पादनार्थम अपेक्षणीयम ज्ञानम अपेक्षा बुद्धि। तो अपेक्षा बुद्धि किसको कहते हैं, तो द्वित्व आदि के उत्पादन के लिए, उत्पादनार्थम माने उत्पादन के लिए जो अपेक्षणीय ज्ञान है, माने जो ज्ञान आवश्यक है, उसी ज्ञान को हम कहते हैं अपेक्षा बुद्धि। ठीक है, तो अपेक्षा बुद्धि से जो है ना द्वित्व आदि संख्या की उत्पत्ति होती है। फिर आगे कहते हैं तत्र द्वौ पिंडौ समवायी कारणे। अब ये जो अपेक्षा बुद्धि है, इस अपेक्षा बुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति हुई। तो द्वित्व की उत्पत्ति में जो दो पिंड रहेंगे, जिस पिंड को आपने कहा इदम एकम, ये जो दोनों पिंड हैं ये इसमें समवायी कारण होते हैं। ठीक है, और पिंडयोः एकत्वे असमवायी कारणे। और अलग अलग दो पिंड हैं तो अलग अलग पिंड में, एक पिंड में एकत्व रहेगा, दूसरे पिंड में भी एकत्व रहेगा। ये जो दो पिंडों में रहने वाला जो दो एकत्व है, वह दो एकत्व असमवायी कारण है, वह असमवायी कारण होता है। माने दो पिंड जो हैं वो द्वित्व में क्या होंगे, समवायी कारण होंगे। और दोनों पिंडों में रहने वाला जो अलग अलग एकत्व है, वो दोनों एकत्व उस द्वित्व की उत्पत्ति में असमवायी कारण होंगे। अपेक्षा बुद्धि ही निमित्त कारणम, और निमित्त कारण कौन होगा द्वित्व की उत्पत्ति में, द्वित्व मतलब द्वित्व आदि समझा करिए। तो द्वित्व आदि की उत्पत्ति में अपेक्षा बुद्धि जो है वह निमित्त कारण होती है। अपेक्षा बुद्धि के लिए मैंने क्या लिखाया कि द्वित्वादि उत्पादनार्थम अपेक्षणीयम ज्ञानम अपेक्षा बुद्धि ही। तो इस तरह से द्वित्व आदि की उत्पत्ति में, द्वित्व की उत्पत्ति में दो पिंड समवायी कारण हो गए और दोनों पिंडों में रहने वाला जो एकत्व है वह असमवायी कारण हो गया और अपेक्षा बुद्धि जो हो गई वह निमित्त कारण हो गई। और इस द्वित्व की उत्पत्ति इस तरह से हुई या नाश कैसे होता है, तो कहते हैं कि अपेक्षा बुद्धि नाशात एव द्वित्व नाशः, ताकि निमित्त कारण जो है अपेक्षा बुद्धि उसका जब नाश होगा तो फिर द्वित्व का भी जो है नाश हो जाएगा। एवं तृत्वादि उत्पत्तिर विज्ञेया, इसी तरह से तृत्व चतुष्टव पंचत्व सत्त्व आदि संख्या के बारे में भी उत्पत्ति और विनाश के संबंध में समझना चाहिए। इस प्रकार संख्या का वर्णन करने के बाद अब छठवां जो गुण है परिमाण नाम का गुण है उसका लक्षण निरूपण करते हैं। कहते हैं कि परिमाणम मान व्यवहार असाधारणम कारणम। परिमाण गुण किसे कहते हैं, तो जो मान व्यवहार का असाधारण कारण है उसे परिमाण कहते हैं, जो मान व्यवहार का असाधारण कारण है उसे परिमाण कहते हैं। असाधारण कारण मतलब विशेष कारण, किसका विशेष कारण, तो मान व्यवहार का। ये मान व्यवहार क्या है, तो मान व्यवहार, व्यवहार तो आप समझते ही हैं, और मान व्यवहार मतलब क्या होता है, मान का अर्थ होता है माप। अब माप में क्या क्या होता है, अब जैसे कहते हैं यह छोटा है, यह लंबा है, यह चौड़ा है, तो इस तरह से ये क्या है, ये है मान व्यवहार। ठीक है, अयम ह्रस्व, अयम लंबा, अयम चतुष्कोणायित, तो इस तरह से जो अयम चतुरस्त रहा, तो इस तरह से जो है जो व्यवहार होता है इसी का नाम है मान व्यवहार। ठीक है, और इस मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है, विशेष कारण है, वह होता है परिमाण नाम का गुण। ठीक है, अब आगे चलिए, अब परिमाण के बारे में आगे बताते हैं। तत्चतुर्विधम, यह जो परिमाण है या ये कह लीजिए ये जो मानव व्यवहार का असाधारण कारण है, यह चतुर्विधम माने चार प्रकार का होता है। कौन कौन, तो अणु महद दीर्घम ह्रस्वम च, माने अणु परिमाण, महत परिमाण, दीर्घ परिमाण और ह्रस्व परिमाण। अणु कहते हैं छोटे को, महत कहते हैं बड़े को, दीर्घ कहते हैं लंबे को और ह्रस्व कहते हैं छोटे को। तो इस तरह से अणु महत दीर्घ ह्रस्व के भेद से यह परिमाण चार प्रकार का होता है। ठीक, अब आगे फिर कहते हैं तत्र कार्यगतम परिमाणम संख्या परिमाण प्रचय योनि। कार्यगत जो परिमाण होता है, कार्यगत, कार्यगत माने कार्यनिष्ठ, कार्य में रहने वाला, कार्य में विद्यमान जो परिमाण है उसको कहते हैं कार्यगतम परिमाणम। तो कार्य में रहने वाला जो परिमाण है वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है संख्या योनि परिमाण, एक होता है परिमाण योनि प्रमाण और एक होता है प्रचय योनि प्रमाण। अब यहाँ जो योनि शब्द है इसका अर्थ कर लीजिए कारणक। ठीक है, तो अगर कारणक अर्थ कर लेते हैं तो अब कैसा भेद हो जाएगा कार्यगत परिमाण का, माने संख्या संख्या कारणक परिमाण, परिमाण कारणक परिमाण और प्रचय कारणक परिमाण। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा परिमाण जिसमें कारण संख्या हो, ऐसा परिमाण जिसमें कारण परिमाण हो, ऐसा कारण जिस मतलब ऐसा परिमाण जिसमें कारण प्रचय हो। तो संख्या कारणक परिमाण, परिमाण कारणक परिमाण और प्रचय कारणक परिमाण, इस तरह से तीन प्रकार के कार्यगत परिमाण होते हैं। ठीक, आगे तद यथा, अब इसका उदाहरण बताते हैं कि संख्या यूनिक जो परिमाण है अर्थात संख्या कारणक जो परिमाण है वह कहाँ क्या होता है, तो कहते हैं कि द्व्यणुक का अणु परिमाण जो है, आप जानते हैं ना कि द्व्यणुक जो बनता है वह दो परमाणुओं के संयोग से बनता है, तो द्व्यणुक का जो द्व्यणुक का परिमाण क्या होगा, अणु परिमाण होगा। वह जो अणु परिमाण है वह परमाणु में रहने वाली जो द्वित्व संख्या है उस द्वित्व संख्या से उत्पन्न होता है। तो द्वनुक का जो परमाणु है वह किससे उत्पन्न हुआ, तो परमाणु में रहने वाली द्वित्व संख्या से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस परिमाण का द्वनुक का जो परिमाण है ये क्या कहलाएगा, संख्या योनि परिमाण कहलाएगा, संख्या कारणक परिमाण कहलाएगा, क्योंकि परमाणु में रहने वाली जो द्वित्व संख्या है उस द्वित्व संख्या से ही द्वनुक का जो अनुपरिमाण है वह उत्पन्न हुआ है। तो यह संख्या योनि परिमाण का उदाहरण हुआ या संख्या कारणक परिमाण का ये उदाहरण हुआ। इसी को फिर इसी तरह से और भी मैं पहले समझा देता हूँ, फिर पंक्ति में बताऊंगा। दूसरा जो है परिमाण योनि परिमाण, तो अर्थात परिमाण कारणक परिमाण, इसका मतलब हुआ कि जो परिमाण से उत्पन्न हो उसको हम परिमाण कारणक परिमाण कहते हैं। जैसे चतुर्णुक आदि का महत परिमाण, चतुर्णुक आदि का कौन सा परिमाण होता है, तो महत परिमाण होता है। महत परिमाण माने जो प्रत्यक्ष योग्य हो ना, उसको हम महत परिमाण वाला मानते हैं। तो चतुर्णुक आदि में जो महत परिमाण रहता है, जैसे द्वनुक में जो है वह कौन सा परिमाण रहता है, अनुपरिमाण रहता है, लेकिन चतुर्णुक आदि में आदि अथा पंचानुक ले लीजिए, तो चतुर्णुक आदि जो है उसमें जो रहने वाला महत परिमाण है वह किससे उत्पन्न होता है, तो वह परिमाण योनि है, माने परिमाण से उत्पन्न होता है। कैसे, तो चतुर्णुक आदि जो है उसका आश्रय कौन हो गया, तो चतुर्णुक आदि का जो समवायी कारण है कौन है, समवायी कारण त्रिणुक है, उस क्योंकि त्रिणुक से ही चतुर्णुक बनता है ना, तो त्रिणुक में रहने वाला जो महत परिमाण है उससे उत्पन्न होता है चतुर्णुक आदि का महत परिमाण। तो त्रिणुक में रहने वाले परिमाण से उत्पन्न हुआ चतुर्णुक का महत परिमाण, इसलिए ये हो गया परिमाण कारणक परिमाण अथवा परिमाण योनि परिमाण। तीसरा होता है प्रचय योनि परिमाण, अर्थात प्रचय कारणक परिमाण। तो अब इसमें एक नया शब्द आया प्रचय शब्द, ये प्रचय क्या है, तो प्रचय का मतलब होता है कि अवयवों के शिथिल संयोग से जो उत्पन्न हो उसको हम प्रचय योनि परिमाण कहते हैं। तो अवयवों का जो शिथिल संयोग है उसका नाम हो गया प्रचय। शिथिल संयोग समझते हैं ना, एक होता है मजबूती से सटा हुआ और एक होता है हल्का से सटा हुआ, तो जो हल्का से जो संयोग होता है उसी को कहते हैं शिथिल संयोग। और यह शिथिल संयोग किन में होगा, अवयवों में होगा। तो अवयवों का जो शिथिल संयोग है उसका नाम है प्रचय। और जिस परिमाण की उत्पत्ति प्रचय से हो अर्थात अवयवों के शिथिल संयोग से हो उस परिमाण को हम प्रचय योनि परिमाण कहते हैं अथवा प्रचय कारणक परिमाण कहते हैं। अब जैसे धुनी हुई रुई जो है, रुई समझते हैं ना कपास, उसको जब धुन दिया जाता है तो धुनी हुई रुई में महत परिमाण रहता है। यह जो महत परिमाण है इसकी उत्पत्ति जो है वह प्रचय से होती है। कैसे, तो उसमें धुनी हुई रुई में रहने वाला जो महत परिमाण है वह अब उसका आश्रय कौन है, तो धुनी रुई का जो अवयव है वह है उसका आश्रय। उस अवयव में रहने वाला जो शिथिल संयोग है माने हल्का सा जो संयोग है उस शिथिल संयोग से वह धुनी हुई रुई का महत परिमाण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि धुनी हुई रुई का जो परिमाण है वह प्रचय से उत्पन्न हुआ, अर्थात धुनी हुई रुई के अवयवों का जो शिथिल संयोग है उससे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से परिमाण जो है वह तीन प्रकार का होता है, संख्या योनि परिमाण, परिमाण योनि परिमाण और प्रचय योनि परिमाण। इसी को अब पंक्ति में देखिए, किताब की पंक्ति में तद यथा द्वनुक परिमाणम, माने द्वनुक में होने वाला जो रहने वाला जो परिमाण है वह ईश्वर अपेक्षा बुद्धि जन्य परमाणु द्वित्व जनितत्वात्, वह जो द्वनुक माने में रहने वाला जो परिमाण है वह ईश्वर अपेक्षा, ईश्वर में रहने वाली जो अपेक्षा बुद्धि उससे जन्य है। वो अपेक्षा बुद्धि आप पहले पढ़ चुके हैं ना, इदम एकम ये है अपेक्षा बुद्धि। तो ये जो अपेक्षा बुद्धि रहती है ये किस में रहेगी, ईश्वर में। तो ईश्वर में रहने वाली अपेक्षा बुद्धि से जन्य जो परमाणु में रहने वाला द्वित्व होता है उस द्वित्व से जनित होता है कौन, द्वनुक में रहने वाला अनुपरिमाण। इसीलिए चूंकि ये परमाणु में रहने वाली द्वित्व संख्या से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम संख्या योनि कहते हैं, अर्थात संख्या कारणकम इत्यर्थ। इसी तरह से त्रिणुक परिमाणं च, त्रिणुक में रहने वाला जो परिमाण है वह स्वाश्रय, यहाँ पर स्वाश्रय मतलब त्रिणुक का आश्रय, त्रिणुक का परिमाण बताना है ना, तो त्रिणुक का आश्रय कौन होता है, द्वनुक होता है, तो वह द्वनुक ही समवायी कारण है वहाँ पर त्रिणुक का, तो द्वनुक रूपी जो समवायी कारण है उसमें रहने वाला जो बहुत संख्या है उस संख्या से ही जो है त्रिणुक परिमाण की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही चतुर्णुक आदि परिमाणं तो स्वाश्रय समवायी कारण परिमाण जन्यम, इसी तरह से चतुर्णुक आदि का जो परिमाण है वह स्वाश्रय, स्व से यहाँ पर क्या लेना है, त्रिणुक को लेना, क्योंकि चतुर्णुक का आश्रय कौन होगा, त्रिणुक ही होगा, तो त्रिणुक स्वाश्रय जो त्रिणुक है समवाय कारण उसके परिमाण से जन्य होता है चतुर्णुक आदि का परिमाण। इसी तरह से तूल पिंड परिमाणम तो वही रुई का जो परिमाण है वह स्वाश्रय, यहाँ पर स्व का अर्थ लेना है क्या, तो तूल कहते हैं रुई को, तो तूलावयव, तो तूलावयव जो है स्वाश्रय समवाय कारण, उसमें रहने वाला जो अवयवों का प्रशिथिल संयोग है, शिथिल संयोग है माने प्रचय है, उस प्रचय से जन्य होता है तूल पिंड परिमाण। परमाणु परिमाणम परम महत परिमाणम च आकाश आदिगतम नित्यमेव, और परमाणु में रहने वाला जो परिमाण है और परम महत परिमाण जो है ये आकाश आदिगतम, ये आकाश आदि में रहने वाला है माने आकाश काल दिक आत्मा और मन भी ले लीजिए, इन सबों में रहने वाला ये नित्य परिमाण होता है। इस प्रकार से परिमाण का विवेचन आपको का पूर्ण हुआ और आपका पाठ भी आज यहीं स्थगित करते हैं।